अरुणिमा गार्डन एरिया में सबके साथ खेल रही थी। वो खेलते खेलते थोड़ी थक गई तो जाकर एक तरफ बैठ गई, जहां पर रजत पहले से ही बैठा हुआ था। सब वहां पर कीर्ति, मिश्री और ज्योति एक साथ खेल रहे थे। अरुणिमा ने सामने रखा पानी का गिलास उठाया और उसे पीने लगी। रजत अरुणिमा को देखते हुए बोला, तुम ठीक तो हो ना? अरुणिमा हैरानी से रजत को देखते हुए बोली, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ है? रजत बिना एक्सप्रेशन के बोला, नहीं बस ऐसे ही, तुम पहले की तरह बिहेव नहीं कर रही हो, अचानक से बहुत ज़्यादा बड़ी लगने लगी हो। सच बता रहा हूँ, राजा साहब के साथ शादी करके तुम खुश तो हो ना? अचानक से अरुणिमा का चेहरा एक्सप्रेशनलेस हो गया और वो हैरान रह गई। उसने जल्दी से अपने चेहरे पर आए भावों को छुपाया और अपने चेहरे पर ज़बरदस्ती की मुस्कान रखते हुए कहा, हाँ रजत मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम फालतू में मेरी फ़िक्र कर रहे हो और ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुझे तुम्हें बताना पड़े। वैसे तो अरुणिमा रजत को समझ रही थी, लेकिन उसकी एक नज़र शारदा जी पर भी बनी हुई थी और उसने अपनी माँ के चेहरे पर आए परेशानी के भाव देख लिए थे। अरुणिमा ने अपनी माँ से पूछा भी कि वो इतनी परेशान क्यों हैं, लेकिन शारदा जी ने ये बात कहकर टाल दी कि अभी अभी कंपनी में इतना बड़ा मसला चल रहा है जिसकी वजह से वो थोड़ी तनाव में है, लेकिन वो अरुणिमा पर इस बात का भार नहीं डाल सकती है क्योंकि उसकी अभी अभी शादी हुई है और अरुणिमा को इस वक्त अपनी घर गृहस्थी पर ध्यान देना चाहिए। अरुणिमा वहां पर सबके साथ बैठी हुई थी, तभी आस्तिक सामने से चलता हुआ आ रहा था। अब तक अरुणिमा के चेहरे पर जो खुशी थी वो अचानक से आस्तिक को देखकर गायब हो गई। जैसे ही आस्तिक वहां पर आया सब उसे देखकर खड़े होने लगे, लेकिन आस्तिक अपना हाथ दिखाकर रोकते हुए बोला, अरे नहीं नहीं आप लोगों को उठने की जरूरत नहीं, मैं बस रानी साहिबा को लेने आया था, दरअसल इम्पॉर्टेंट गेस्ट आए हुए हैं। अरुणिमा आस्तिक के साथ नहीं जाना चाहती थी, लेकिन शारदा जी ने अरुणिमा के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, जाओ अरु, राजा साहब तुम्हें लेने आए हैं, उनके कोई मेहमान आए हैं। अरुणिमा ने अपने चेहरे पर ज़बरदस्ती की मुस्कान रखते हुए हाँ में सिर हिलाया और खड़ी होकर राजा साहब के पास चली गई। आस्तिक ने अरुणिमा का हाथ पकड़ लिया और उसे अपने साथ ले जाने लगा, पर जैसे ही वे लोग गार्डन एरिया से महल की तरफ जा रहे थे, रास्ते में ही आस्तिक ने अरुणिमा की कमर पर कस के अपना हाथ डाल लिया। अरुणिमा एक पल के लिए चौंक गई। राजा साहब के कदम रुक गए और वो अरुणिमा को घूरते हुए देखकर कह रहे थे, बहुत हंस के बात कर रही थी तुम उस रजत के साथ, क्या हुआ मुझे देखकर तुम्हारी हंसी क्यों गायब हो गई? अरुणिमा की आंखों में पानी आ गया था। उसने आस्तिक को देखकर कहा, आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, रजत बस मेरे बचपन का दोस्त है और मैं उससे नॉर्मली बात कर रही थी। लेकिन आस्तिक की पकड़ अरुणिमा की कमर पर और तेज हो गई और उसने अरुणिमा की आंखों में देखते हुए अपने दांत पीछते हुए कहा, बचपन का दोस्त है, लेकिन अब बच्चे तो नहीं रहे हो ना तुम दोनों, और बचपन का दोस्त ही सही है तो मर्द ही, और दूसरे मर्दों के सामने इतना मुस्कुराकर क्या दिखाना चाहती थी, अपनी खूबसूरती से उसे रिझाने की कोशिश कर रही थी। अरुणिमा के चेहरे पर घबराहट आ गई और वो जल्दी से नामे सिर हिलाते हुए बोली, नहीं राजा साहब ऐसा कुछ भी नहीं है। आस्तिक ने गुस्से में कहा, मना किया था ना मैंने तुम्हें, किसी के सामने मुस्कुराकर बात नहीं करोगी, लेकिन अभी कुछ घंटे ही नहीं बीते कि तुमने मेरी बात काट दी, तुम देखो अब तुम्हें इसकी सजा कैसे मिलती है। अरुणिमा का चेहरा डर से भर गया और वो हैरानी से आस्तिक को देखने लगी। आस्तिक के हाथ अरुणिमा की कमर पर इतने कसे हुए थे जैसे उसकी कमर के आर पार हो जाएंगे। अरुणिमा की कमर पूरी लाल हो गई थी और उसे बहुत दर्द भी हो रहा था, पर इससे पहले कि उसकी आंखों से आंसू गिरते आस्तिक ने गुस्से में कहा, जो मेहमान आए हैं वे बहुत खास हैं तो उनके सामने ये नाटक करने की जरूरत नहीं है, मुस्कुराओ। अरुणिमा ने अपने दर्द भरे चेहरे के साथ आस्तिक को देखा और फिर अपने चेहरे पर जबरदस्ती की मुस्कान लाने लगी। उसको मुस्कुराता देख आस्तिक के चेहरे पर भी एक घटिया सी मुस्कान आ गई और उसने कहा, वेरी गुड, इसी तरीके से मेरी बात मानती रहो, बिल्कुल एक पपेट की तरह। उसके बाद आस्तिक अरुणिमा को लेकर महल के अंदर आ गया। सोफे पर मिस्टर एंड मिसेस गोयनका अभी भी बैठे हुए थे। आस्तिक अरुणिमा को उनके पास लाया और सामने किया। राधा जी जब अरुणिमा को देखती हैं तो मुस्कुराते हुए कहती हैं, अच्छा तो ये है वो जिसे आपने चुपकर शादी की है? आस्तिक मुस्कुराते हुए कहता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, दरअसल मुझे भीड़भाड़ ज़्यादा पसंद नहीं है और शादी तो मेरा व्यक्तिगत मामला था, वैसे भी अरुणिमा को भी ज़्यादा लोग और सोशल अप पसंद नहीं है, इसीलिए हम दोनों ने सिंपल तरीके से शादी की है। राधा जी अरुणिमा को अपने पास बिठाती हैं और उसके चेहरे पर हाथ फेरते हुए कहती हैं, मानना पड़ेगा आस्तिक तुम्हारी बीवी बहुत सुंदर है, बिल्कुल किसी राजकुमारी की तरह। आस्तिक के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ गई और वो अरुणिमा को घूरते हुए कहता है, कठपुतली की तरह। आस्तिक की बात पर सब लोग हैरानी से उसे देखने लगे, यहाँ तक कि अरुणिमा भी। आस्तिक जल्दी से अपनी बात बदलते हुए बोला, मेरा मतलब है कि हमारे यहाँ पर कठपुतलियाँ काफ़ी फेमस है ना, तो इसीलिए मैंने अपनी बीवी को एक सुंदर सी राजकुमारी वाली कठपुतली का दर्जा दिया है। सब लोगों को आस्तिक की ये बात मजाक लगी और वहाँ पर जोर से ठहाकों की गूंज गूंजने लगी, लेकिन सिर्फ अरुणिमा ही जानती थी कि आस्तिक के ये शब्द शब्द नहीं है बल्कि ये उसकी ज़िंदगी है। आस्तिक ने सच में उसे एक कठपुतली की तरह ही रखा है जो उसके इशारे पर नाचती है। सब लोग वहां बैठकर बात कर रहे थे। बातों बातों में ही अरुणिमा को पता चला कि सामने बैठे ये लोग दरअसल प्रणाली के होने वाले ससुराल वाले हैं। सब लोग वहां बैठकर अनप्रोफेशनल बातें कर रहे थे जिसमें अरुणिमा को जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। वो तो यहां से वापस गार्डन एरिया में जाना चाहती थी जहां उसका परिवार मौजूद था, वो उनके साथ समय बिताना चाहती थी। वो चाहती थी कि पार्टी शुरू होने से पहले वो अपने परिवार के साथ खूब सारा समय बिताए, क्योंकि उसे नहीं पता था कि दोबारा ये मौका उसे मिलेगा या नहीं। पर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी आस्तिक से ये पूछने की। अरुणिमा ने सबको देखा और फिर अपने मन में कहा, मुझे यहाँ से जाना है, पर मैं क्या करूँ? इसे कैसे कहूँ कि मैं यहाँ पर रहकर इन सबसे बात नहीं करना चाहती हूँ? क्या बात करूँगी इन सबसे? पता नहीं कौन से राजा महाराजाओं की बात लेकर बैठ गए हैं। मुझे क्या करना है अकबर बाबर के बारे में जानकर? मुझे तो बाहर जाना है, मिस्ट्री के साथ खेलना है, माँ के साथ बातें करनी है।